छंद त्रोटक पद संख्या 25। मयमंजन मंडित बालतन घनसार सुगंध सुबोर घन लव लोइन अंजित मंज चले कि मानुकस कुंदन खम्बहली शुभ वस्त्र सुवंग सरंग नसी सुहली मनु साख मदन कसी जरि जे हरि पाय जरायु जरि सज भूखन नंभ मनव उतरी सिगरे लटियों बिथरी बिगसे शशिके मुकते अहिसे निकसय रगरत्ता वट्टन उज्ज्वल कय तनि में कछु सीत सुधा चलिकय नवराज रोम विराज इसी जमना पर गंग सरस्वती सी परिपान सुकुंकुम मंजन कय नवरीज अंजन नयननिकय। प्रसंग हर सिद्ध स्थान पर जाने से पहले राजकुमार शशिव्रता ने स्नान और फिर सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगारित शशिव्रता के रूप सौंदर्य और आकर्षण का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। व्याख्या। स्नान करने के पश्चात यौवन रूप मद में मस्त उस युवती राजकुमारी शशिव्रता ने अपने शरीर को सब प्रकार के भूषणों से सजाया संवारा। उसने कर्पूर तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से मिश्रित जल में शरीर को डुबोकर या डुबकी लगाकर स्नान किया। इसके बाद उसने स्नान से नवकमल के समान खिल उठे नयनों में अंजन आँचा। इससे उसका रूप यौवन कुछ इसके समान खिल उठे नयनों में अंजन आँचा। इसके उसका रूप कुछ इस प्रकार से निखार आया कि मानो सोने को अभी भी कसौटी पर कसा गया हो, अर्थात जैसे कसौटी पर कसे जाने के बाद उस पर उजली रेखा बन जाती है, उसी प्रकार स्नान करने और फिर नयनों में अंजन आँजने से उसका सौंदर्य निखर कर चमकने लगा। उसके बाद राजकुमार शशिव्रता ने अपने सुंदर शरीर पर अनेकों प्रकार की सुंदर वस्तुएं धारण की। उन वस्त्रों में वह देवांगना से सजीली और तेजस्वी प्रतीत हो रही थी, या फिर वह कामदेव के स्वर्णिम कसौटी पर कसकर निखारी गई रुपहली शाखा के समान लग रही थी। उसने जड़ाऊ गहने धारण किए, पाँव में भी जरी से जुड़े जेवर और जूते पहने। इस प्रकार भूषणाभूषणों से सज्जित राजकुमारी शशिव्रता उस समय ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई सज्जित अप्सरा या किन्नरी आकाश मार्ग से धरती पर उतर आई हो। राजकुमारी शशिव्रता के चांद जैसे खिले सुंदर मुख के आसपास उसकी सुंदर और रुपहली अलकें बिखर कर ऐसी लग रही थी कि जैसे चांद के मुख से काले काले सर्प निकल रहे हों। कवि ने यहाँ शशिव्रता के मुख को चांद और उसके आसपास बिखरी लटों या अलकों को सांप के रूप में उपस्थित किया है। उपमान विधान रचित होते हुए भी सौंदर्य को कुछ डरावना बना देता है। राजकुमारी ने अपने अंगों पर रक्ताप उपटन मलकर उसे उज्जवल कर दिया था। उस लाल उपटन में पड़े श्वेत कण अमृत कणों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। स्नान और श्रृंगार के बाद उसके तन पर नवीन से चलने वाली लगने वाली रोमावली ऐसे शोभा पा रही थी जैसे गंगा और सरस्वती नदियों के बीच में यमुना सुशोभित होती है, अर्थात शशिव्रता का गोरा रंग गंगा की उज्ज्वलता, उस पर मला रक्ताप उपटन सरस्वती की रक्ताप जल का और काली रुमावली यमुना नदी के श्यामल जल का आभास दे रही थी। इस प्रकार केशर मिले जल में स्नान के अनंतर उसने नए खिले कमल के समान सुंदर नयनों में अंजन भी आंज रखा था। नयन ताजे खिले कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। विशेष प्रथम पद में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों की योजना बड़ी ही मोहक है। दूसरे पद में भी अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों की योजना उचित बन पड़ी है। तीसरे पद में उपमा अलंकार की योजना की गई है, जो उपमान रूप में सर्व के ग्रहण से चुस्त परख होते हुए भी सौंदर्य बोध में बाधक कही जा सकती है। चौथे पद में उपमा अलंकार की योजना पूर्णतया सफल, सार्थक एवं सुंदर है। गंगा के जल का रंग श्वेत या उज्ज्वल, सरस्वती नदी के जल का रंग लाल या रक्ताप और यमुना का सांवला या कालिमा लिए हुए स्वीकारा जाता है। अतः कवि ने चौथे पद्य में इन तीनों के संगम को दिखाकर सौंदर्य के समस्त अंगों का संगम राजकुमारी शशिव्रता के शरीर में दिखाया है। वर्णन पूर्ण सार्थक और सटीक है।
ठंडी में घूम रहे मार रहे ठंडी व्याख्या कर रहा हूँ शशिव्रता वाले खंड का जो बढ़िया ले आऊँ तो यहाँ कर दूँ तब ना पास होंगे।
ठीक है।
कुंडलियां करिमज्जन सज्जन सुक्रम आभूषण न समान, केह काके कोहि दीसी सज सखी नयन कमान केश बागुरी विस्तारिय, आव भाव कटाक्ष ठुकी खुट्टी दिय भारिय, बैठी नयन रिप मूल प्रेम देखन गह सज्जन, मन मृग पिय कृत काज ताकि बंधन किय समज्जन। प्रसंग। राजकुमार शशिव्रता प्रिय मिलन के लिए प्रीतम को अपने रूप यौवन श्रृंगार और प्रेम से वश में करने के लिए अनेक प्रकार से सुसज्जित हो रही हैं। उसी सब का वर्णन करते हुए कवि कहता है, व्याख्या। राजकुमारी शशिव्रता ने पहले ठीक प्रकार से स्नान किया और उसके बाद वह क्रम से वस्त्राभूषण धारण करते हुए अपने शरीर का श्रृंगार करने लगी। एक तो उसके पास आभूषण बहुत अधिक थे जो उसके तन पर समा नहीं पा रहे थे, दूसरे प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसका ध्यान बटा हुआ था, अतः उसने विशेष अंग से संबंधित कोई आभूषण किसी अन्य अंग पर धारण कर लिया। अपने नयनों को अंजन आदि से सजा संवार कर उनकी भंगिमा को उसने धनुष के समान तिरछा बांका बना लिया। केशों के जूड़े को भी उसने ठीक प्रकार से विस्तृत या सुशासित करके विकसित कर लिया। उसकी कटाक्ष संयत दृष्टियाँ अनेक प्रकार के प्रेमपूर्ण हाव भावों से मंडित हो रही थी। मस्तक पर उसने सुशासित बड़ी ही बिंदी अंकित की। उसने अपने नयनों में प्रियतम महाराज पृथ्वीराज को बसा लिया था और अब प्रत्यक्ष रूप में भी अपने प्रियतम को पूर्ण अभिलाषा से भर कर देखने के लिए आतुर हो रही थी। उसका मन उस समय प्रिय दर्शन के लिए उसके प्रेम बाण सहने के लिए हरण के समान हो रहा था। यह अर्थ भी हो सकता है कि प्रिय दर्शन के लिए उस समय उसका मन हरण के समान चंचल एवं व्याकुल होने लगा था। उसी को बंधन में अर्थात वश में करने के लिए ही उसने पूर्ण विधि से स्नान ध्यान किया था। विशेष पद में कुंडलियां और मृगमग पदों में रूपक की योजना की गई है। दूसरी ओर अंतिम पंक्तियों में सानुप्रासिक योजना भी विशेष द्रष्टव्य है। केह काके कोहिदिसी पद में प्रिय मिलन की आतुर नायिका के उतावलेपन का स्वाभाविक वर्णन पूर्णतया मनोविज्ञान सम्मत है। इससे पता चलता है कि कवि को मानव मन और उसकी विशिष्ट स्थितियों का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। उतावलेपन में वस्तु स्थिति में अनेक बार हेर फेर हो जाया करता है, सामान्य जनों में भी, फिर प्रेमियों का तो कहना ही क्या। छंद नाराज। सिंदूर मध्य गुच्छत वक्रमंद विराजयम, मानो किशोर उगते गहे सुपुत्र लाजयन, सुतुक्ष सुच्छ पाट आट प्रेम बाट शोभिय, मनो की चंद राह मवान बेप्रमाण लोभिय। प्रसंग। प्रिय मिलन के लिए जाने से पहले शशिव्रता ने स्नान किया और फिर अनेक प्रकार से श्रृंगार किया, मांग में सिंदूर भरा और रेशमी वस्त्र धारण किया। इस प्रक्रिया में उसके रूप यौवन और आकर्षण का वर्णन करते हुए प्रस्तुत पद्य में कवि चंद्रवरदाई कहते हैं, व्याख्या। राजकुमार शशिव्रता ने केशों के मध्य या मांग के बीच सिंदूर भरा, उसके बीच में लगाई गई कस्तूरी कुछ इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि जैसे सूर्योदय हो रहा हो। वस्तुतः कस्तूरी का वर्ण कृष्ण होता है और सिंदूर लाल, अतः यहाँ सिंदूर को सूर्योदय और कस्तूरी को रात्रि के अंधकार का प्रतीक मानकर ऐसे भी अर्थ किया जा सकता है कि जैसे रात्रि के भेदन को के अंधकार को भेदने के लिए सूर्योदय होता है और शोभा पाता है, उसी प्रकार कस्तूरी मंडित काले केशों में सिंदूर अपनी अरुणिमा एवं उज्ज्वलता में चमक रहा था। कस्तूरी का कृष्ण वर्ण इतना उज्ज्वल था कि उसे देखकर सूर्यपुत्र यमराज भी लज्जित हो गया था। किंचित या कुछ श्वेत वर्ण वाले रेशमी वस्त्र धारण करके प्रेम मार्ग पर चलने को आतुर राजकुमारी शशिव्रता उसी प्रकार आकर्षित कर रही थी कि जैसे पूर्ण चंद्रमा पथ पर अग्रसर पथिकों का ध्यान हठात अपनी ओर आकर्षित कर लिया करता है। विशेष कोशे या रेशमी वस्त्रों में सुशोभित राजकुमारी के आकर्षक व्यक्तित्व का वर्णन सुंदर बन पड़ा है। चांद के आकर्षित करने के समान उसके आकर्षण की संभावना व्यक्त करके कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग बड़े सार्थक ढंग से किया है। सानुप्रासिकता भी द्रष्टव्य है। कनक काम कुंडिल हलंत तेज उभरे, सभी सहाय मान भाई सज्ज सुर दो करे, द्वितीय उपम विंद की किरण चंद दिठ्ठयम, मनो किशोर इंद गोदी अप आन विठ्ठयम। प्रसंग पिय मिलन के लिए जाने से पहले राजकुमार शशिव्रता ने विशेष श्रृंगार किया है। श्रृंगार के प्रत्येक रूप का कवि किसरा में वर्णन कर रहा है। प्रस्तुत पद्य में शशिव्रता के कर्ण कुंडल में माथे की बिंदियों का सुर में वर्णन करते हुए कवि चंद्रपरदाई कह रहे हैं। व्याख्या। राजकुमार शशिव्रता के दोनों कानों में सोने से विनिर्मित कुंडल हिल रहे हैं और अपनी तेजस्विता में उभर कर सहसा सामने आ जाते हैं, अर्थात ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं। उन कुंडलों को निहार कर कवि कल्पना कर रहा है। कुंडलों को हिलते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो अपनी सहायता के लिए स्वयं चंद्रमा ने सबके मन को भाने वाले तेजस्वी सूर्य को दो भागों में विभाजित करके अपने आसपास सजा लिया हो, अर्थात शशिव्रता का मुख तो चांद के समान उज्ज्वल एवं सुंदर लग रहा है, जबकि उसके कुंडल सूर्य के प्रकाश के समान चमकीले प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियम के अनुसार अपने को प्रकाशित करने के लिए चांद ने सूर्य से सहायता प्राप्त की है। इसके बाद शशिव्रता के माथे पर बिंदिया की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, राजपुत्री शशिव्रता के माथे पर बिंदिया सूर्य की किरणों के समान चमक में प्रकाशित हो रही है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी सूर्य आज स्वयं ही चंद्रमा के पास आकर उसकी गोद में बैठ गया है। यहाँ कवि ने शशिव्रता के मुख को चांद और उसके माथे पर लगी बिंदिया को सूर्य बताकर दो प्रकाश पुंजों के सानिध्य का वर्णन किया है। विशेष। संपूर्ण पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके ही प्रकाशित होता है। यह वैज्ञानिक सत्य प्रस्तुत पद में भी स्वतः ही प्रकाशित हो गया है, जबकि परंपरागत भारतीय मान्यता चांद को भी एक स्वतः प्रकाशित ग्रह या देवता स्वीकार करती है। चांद की गोद में सूर्य का बैठना भी एक असंभव कल्पना है, क्योंकि सूर्य की निकट प्रचंडता को कोई भी सहन नहीं कर सकता। फिर भी कवि की कल्पनाएं उक्तियां काव्यात्मक एवं पूर्ण आकर्षक हैं। भुवन बंक संक जुव नयन मग्र जुवयम उद्धरता चप्पल गति अच्छ आनी ओवय कटाक्ष नयन बंक संक चित्तमान बंकय सुछंडी वय सुकुंचितम श्रवण बाण नयखयम। प्रसंग। राजकुमार शशिव्रता के बाकी तिरछी भाव और आकर्षक चाल आदि का वर्णन करते हुए चंद कवि कहते हैं। व्याख्या। राजकुमारी जो पूर्ण होती है उसकी भवें बड़ी ही बंकी एवं सशंकित प्रतीत होती हैं। उसके नयन मृगी के नयनों के समान विकसित बड़े और चंचल हैं। यौनागम के कारण मस्त गंभीर हो गई उसकी गलियां चाल देखने वालों के मन में उतर जाने वाली या हार्दिकता से पूर्ण एवं हृदय को वेध कर रखने वाली देने वाली है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उसके प्रत्येक अंग और गति में यौवन का उभार समाया जा रहा है। कटाक्षपूर्ण तेवर में मंडित उसके बांके तिरछे नयन सुसंगित भावना लिए हुए हैं और देखने वालों के मन में अपने भवांकपन की शंकाओं के साथ सीधे उतर जाते हैं, अर्थात देखने वाले के मन पर अपने बांकेपन के कारण हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। शशिव्रता के कानों पर खींचे धनुषाकार तिरछे नयन कटाक्षों के जो बाण छोड़ते रहते हैं वे देखने वालों के हृदयों के संपूर्णतः पार उतर जाते हैं, अर्थात नयन और चाल अपनी बंकिम भंगिमा के कारण अत्यधिक प्रभावी और स्थायी प्रभाव छोड़ जाने वाली है। विशेष। कवि के वर्णन की भंगिमा की चाल और नयनों के समान ही बंकी हो गई है। परिणामतः वर्ण विषय अत्यधिक मनोरम एवं प्रभावी बनकर अभिव्यंजित हुआ है। उपमाओं की झड़ी भी दर्शनीय है। भाषा के बंकिम सानुप्रासिकता और धनात्मकता विशेष उल्लेख्य है।